अध्याय संख्या 20, मूल्यांकन। वार्षिक परीक्षा प्रणाली के दोष। आजकल विद्यालयों में प्रायः वार्षिक परीक्षा के आधार पर ही छात्रों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण घोषित किया जाता है, किंतु इस प्रणाली में अनेक दोष हैं। वार्षिक परीक्षा में छात्रों को प्रायः 3 घंटे का समय दे दिया जाता है और 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने को कह दिया जाता है। ये उत्तर प्रायः निबंध के रूप में होते हैं। निबंधात्मक उत्तरों की जांच करते समय परीक्षक कभी कभी उन तत्वों की भी जांच करने लगते हैं जिनका परीक्षा के उद्देश्य से कोई संबंध नहीं होता। इसी प्रकार वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अनेक दोष हैं जिनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है। प्रथम, इस समय वार्षिक परीक्षाएं साधन की अपेक्षा साध्य हो गई हैं और संपूर्ण शिक्षा परीक्षा केंद्रित हो गई है। छात्रों को परीक्षा के लिए ही तैयार किया जाता है, ना कि ज्ञान के लिए। द्वितीय, प्रत्येक परीक्षार्थी को 3 घंटे में केवल 5-6 प्रश्न करने होते हैं। यदि छात्र संयोगवश इन प्रश्नों के उत्तरों को पढ़ लेता है तो उत्तीर्ण हो जाता है, अन्यथा असफल घोषित किया कर दिया जाता है। इस प्रकार वर्तमान परीक्षा प्रणाली संयोग पर निर्भर है, ना कि अध्ययन पर। तृतीय, बहुत से छात्र इस परीक्षा प्रणाली द्वारा हतोत्साहित व निराशावादी हो जाते हैं। परीक्षाफल भाग्याधीन होने के कारण कभी कभी छात्र का वर्ष भर का परिश्रम निष्फल हो जाता है। चतुर्थ, संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करने की प्रेरणा नहीं मिलती। पहले तो पूरे पाठ्यक्रम पर प्रश्न ही नहीं होते, फिर जो 10-12 प्रश्न होते हैं उनमें से भी केवल 5-6 प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए कहकर छात्रों को हम पाठ्यक्रम का एक अंश ही पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर पाते हैं। उसमें भी 33% उत्तीर्णांक रखकर हम चाहते हैं कि छात्र बहुत कम पढ़ाई लिखाई का काम करें। पंचम, प्रश्न पत्रों की रचना में व्यक्तिगत रुचियों एवं अभिवृत्तियों को प्रश्रय देकर परीक्षक कभी कभी प्रश्नों को अति सरल और कभी कभी अति कठिन कर देते हैं। कभी कभी तो परीक्षक जो प्रश्न देते हैं उन प्रश्नों की सीमाओं एवं सापेक्षिक महत्ता से स्वयं अनभिज्ञ होते हैं। प्रश्न पत्र यदि सरल है तो अधिक परीक्षार्थी उत्तीर्ण हो जाएंगे और कठिन है तो कम। अतः सभी प्रकार के विषयों एवं प्रश्न पत्रों के लिए 33% उत्तीर्णांक रखने के लिए कोई औचित्य तब तक नहीं है जब तक कि किसी विशेष प्रविधि के माध्यम से प्रश्न पत्रों की कठिनता एक सी न कर ली जाए। षष्ठ, प्राप्तांक योग्यता के सूचक नहीं हैं। प्रश्नों की कठिनता में भिन्नता होने के कारण प्राप्तांकों से छात्र की यथार्थ योग्यता का कोई परिचय नहीं प्राप्त होता। किसी प्रश्न पत्र में 10% अंक दूसरे प्रश्न पत्र में 50% अंक के समान स्तर रख सकते हैं। सप्तम, इस परीक्षा प्रणाली द्वारा विषय की परख नहीं हो पाती, क्योंकि परीक्षकों का की व्यक्तिगत रुचियों, निष्ठाओं, योग्यताओं एवं पूर्ण धारणाओं का अंक देने में प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक परीक्षा की अच्छे उत्तर की धारणा भिन्न होती है। कभी कभी वह लेखन शैली या उत्तरों की लंबाई से प्रभावित हो जाता है। अतः वर्तमान परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय व वैध नहीं है। अष्टम, वर्तमान परीक्षा प्रणाली द्वारा रटन को प्रोत्साहन मिलता है। छात्र विषय को समझने की अपेक्षा रटता है। इसके द्वारा छात्र की स्मरण शक्ति और कंठाग्र करने की योग्यता का मूल्यांकन तो हो जाता है, किंतु ज्ञानोपार्जन का मूल्यांकन नहीं हो पाता। नवम, वर्तमान परीक्षा प्रणाली की भावी योग्यता की सूचक नहीं होती। कम अंक पाने वाले विद्यार्थी आगे चलकर अच्छा कर सकते हैं और छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र सबकी आशाओं पर पानी फेर सकता है। दसम, परीक्षा छात्र के भावात्मक जगत को विचलित करके उसे चिंताग्रस्त बना देती है और परीक्षाओं के दिनों में अत्यधिक परिश्रम करने से छात्र का स्वास्थ्य चौपट हो जाता है। एकादश, वर्तमान परीक्षा प्रणाली छात्र के समालोचनात्मक चिंतन, रचनात्मक चिंतन और मौलिकता को कुंठित कर देती है। द्वादश, परीक्षा में उत्तीर्ण होना एवं प्रमाण पत्र प्राप्त करना ही लक्ष्य होने के कारण छात्र परीक्षा में नकल करने, सिफारिश करने, धोखा देने, बेईमानी करने जैसी अनैतिक क्रियाओं को करने में झिझकता नहीं है और चरित्रहीन हो जाता है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली और शिक्षा आयोग। वर्तमान परीक्षा प्रणाली के दोषों की ओर अनेक आयोगों ने भी संकेत किया है। सन 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने लिखा था कि इस समय शिक्षण परीक्षाओं के अधीन हो गया, ना कि परीक्षाएं शिक्षण के अधीन। सन 1904 में भारत राज्य की शिक्षा नीति के प्रस्ताव में कहा गया था कि गत वर्ष में परीक्षाओं ने अति वृहद रूप धारण कर लिया है और भारत की सारी शिक्षा पर उनका ऐसा आतंक छा गया है कि निर्धारित उद्देश्य से शिक्षण कुछ संकुचित हो जाता है। सन 1909 में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने लिखा कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली पर समितियां बिना अत्यंत दुख के नहीं पढ़ी जा सकती। अत्यंत बृहद प्रयत्न और फलों की निरपेक्षता, विद्यार्थियों की दुखद चिंताएं, यंत्रवत मूल्यांकन जिससे मस्तिष्क को न्यूनातिन्यून प्रोत्साहन मिले, जनता की ओर उत्तरदायित्व उल्लंघन करने वाली विश्वविद्यालयों की उदारता तथा अधिक योग्य विद्यार्थियों के साथ न्यून योग्यता वाले विद्यार्थियों का वर्गीकरण, उदारता होते हुए अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, सारी परीक्षा प्रणाली का अध्यापक तथा विद्यार्थी पर हतोत्साही प्रभाव और बंगाल के युवकों की बुद्धि का अपव्यय, ये दोष प्रत्येक विभागाधिकारी की राय में तथा हमारे निरीक्षण से प्रत्यक्ष प्रमाणित तथा हृदयांकित होते हैं। सन 1938 में जाकिर हुसैन समिति ने कहा था कि हमारे देश की प्रचलित परीक्षा प्रणाली शिक्षा के लिए एक अभिशाप सिद्ध हुई है। संभवतः एक निकृष्ट शिक्षा प्रणाली परीक्षाओं को उपयोगिता से अधिक निरपेक्ष उच्च स्थान देने से और भी निकृष्ट हो गई है। सन 1949 में राधाकृष्णन आयोग ने कहा, यदि हम विश्वविद्यालय शिक्षा में कोई एक सुझाव दें तो वह केवल परीक्षाओं के सुधार के संबंध में ही हो सकता है। सन 1953 में मुदालियर आयोग ने का कथन था कि परीक्षाएं विद्यालय के सारे पर्यावरण में इस प्रकार व्याप्त हो गई हैं कि यह छात्र व अध्यापन के समस्त ध्येयों की प्रेरक हो गई हैं। सन 1966 में कोठारी आयोग ने भी वर्तमान शिक्षा प्रणाली की विस्तृत आलोचना की और उसमें सुधार के अनेक उपाय बताए। वर्तमान परीक्षा प्रणाली के में सुधार के उपाय। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए अनेक प्रकार के उपाय बताए गए हैं। राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालयी परीक्षा पद्धति में सुधार के लिए जो सुझाव दिए हैं उनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। प्रथम, प्रत्येक विश्वविद्यालय में 3 व्यक्तियों की एक परीक्षा परिषद बनाई जाए। द्वितीय, परीक्षार्थियों की परीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ एवं प्रगतिशील परीक्षणों का निर्माण किया जाए। तृतीय, 3 वर्ष के अंत में ही परीक्षा न लेकर प्रत्येक वर्ष के अंत में परीक्षा ली जाए। चतुर्थ, प्रथम श्रेणी 70%, द्वितीय श्रेणी 55% तथा तृतीय श्रेणी 40% कर दी जाए। मुदालियर आयोग ने इस संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। प्रथम, बाह्य परीक्षाओं की अपेक्षा आंतरिक परीक्षाओं की संख्या में वृद्धि की जाए। द्वितीय, आंतरिक परीक्षाओं के साथ सावधि परीक्षण तथा विद्यालय अभिलेखों के आधार पर छात्र का मूल्यांकन किया जाए। तृतीय, परीक्षा केवल निबंधात्मक ना हो। चतुर्थ, आंतरिक परीक्षाओं में मूल्यांकन प्राप्तांकों में ना होकर श्रेणी में हो। कोठारी आयोग ने कक्षा 1 से 4 तक कोई श्रेणी विभाजन न करने एवं उच्चतर प्राथमिक कक्षाओं में लिखित परीक्षाओं के साथ साथ मौखिक परीक्षा की सिफारिश की। प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति पर एक बाह्य परीक्षा हो। कुछ माध्यमिक विद्यालयों में को छांटकर उन्हें स्वायत्त शासी बनाया जाए जो दसम कक्षा के अंत में स्वयं परीक्षा ले सकें। एक केंद्रीय परीक्षा सुधार इकाई हो जो विश्वविद्यालयी परीक्षाओं में सुधार कर सके। बाह्य परीक्षाओं के स्थान पर क्रमिक आंतरिक परीक्षा पद्धति प्रारंभ की जाए। मूल्यांकन की नई प्रविधियों में प्राध्यापकों को दीक्षित किया जाए एवं परीक्षा कार्य पर पारिश्रमिक न दिया जाए। वस्तुतः बाह्य परीक्षाओं को धीरे धीरे हम कम करके आंतरिक परीक्षाओं में वृद्धि करना, वस्तुनिष्ठ एवं लघुत्तर परीक्षण तैयार करना, सरल एवं स्पष्ट प्रश्नों की रचना करना, वर्ष भर के कार्य एवं प्रगति के आधार पर प्रोन्नति देना, परीक्षा को साधन बनाना, परीक्षण कार्य में विश्वसनीयता एवं वैधता लाना, मौखिक लिखित एवं क्रियात्मक परीक्षाओं की व्यवस्था करना आदि कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे वर्तमान वार्षिक परीक्षा प्रणाली के दोषों को कुछ सीमा तक दूर किया जा सकता है। संस्कृत में वर्तमान परीक्षा प्रणाली। संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अध्यापक और छात्र कुछ क्रियाएं करते हैं। इन क्रियाओं के द्वारा अध्यापक चाहता है कि छात्र के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आए। छात्र के व्यवहार में जब तक अभीष्ट परिवर्तन नहीं आता तब तक अध्यापक अपने कार्य को सफल नहीं समझ सकता और संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य भी तब तक अप्राप्य ही बने रहेंगे। इसीलिए शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन शिक्षण का आवश्यक अंग है। आजकल जो परीक्षा प्रणाली हमारे विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रचलित है उनमें अनेक दोष हैं। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में छात्र द्वारा अर्जित योग्यता एवं ज्ञान का ठीक ठीक परीक्षण नहीं हो पाता। इसमें यह भी नहीं पता लगता है कि पाठ्य विषय ठीक है या उसमें परिवर्तन अपेक्षित है। वर्तमान परीक्षा द्वारा हमारी शिक्षण विधि पर भी कोई प्रकाश नहीं पड़ता। संस्कृत में इस समय जिस प्रकार की परीक्षाएं होती हैं उनमें व्यक्ति निष्ठता अधिक होती है, विषय निष्ठता कम। एक प्रकार से देखा जाए तो वर्तमान परीक्षाएं बालक को केवल स्मृति का परीक्षण करती हैं और उनकी शेष मानसिक योग्यताएं अपरीक्षित ही रह जाती हैं। इन परीक्षाओं में संयोग का अधिक हाथ रहता है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में हम संस्कृत भाषा के कुछ तत्वों की ओर कोई ध्यान नहीं देते। हम यह देख चुके हैं कि भाषा के चार प्रमुख कौशल हैं। प्रथम बोलना, द्वितीय लिखना, तृतीय पढ़ना और चतुर्थ सुनना। इन चार कौशलों की परीक्षा अवश्य होनी चाहिए क्योंकि संस्कृत भाषा का ज्ञान इन चारों के ज्ञान पर निर्भर है। किंतु सुनकर समझने की योग्यता एवं बोलकर आत्म प्रकाशन करने की योग्यता की परीक्षा आजकल की निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली द्वारा ही हो ही नहीं पाती। इनके अतिरिक्त बालकों के उच्चारण, वर्तनी, शब्द भंडार आदि की भी परीक्षा उचित रूप से नहीं हो पाती है। वर्तमान परीक्षाओं में छात्रों को जो प्रश्न पत्र दिए जाते हैं उनकी भी रचना दोषपूर्ण होती है। प्रश्न पूरे पाठ्यक्रम पर नहीं होते और अधिकांश प्रश्न केवल सूचनाओं एवं तथ्यों की जानकारी करने के लिए होते हैं, जबकि सूचनाओं एवं तथ्यों का स्वयं कोई महत्व नहीं होता। वस्तुतः सूचनाओं की परीक्षा की अपेक्षा सूचनाओं का बुद्धिमत्ता से प्रयोग करने की क्षमता की अधिक परीक्षा आवश्यक है। प्रश्नों के उत्तर निश्चित नहीं होते, अतः परीक्षा फल परीक्षक के निर्णय पर अधिक निर्भर करता है, परीक्षाओं के ज्ञानोपार्जन पर कम। नवीन परीक्षा प्रणाली। संस्कृत की परीक्षा के उपर्युक्त दोषों को दूर करने के लिए परीक्षा प्रणाली को भी बदलना होगा। परीक्षा के साधन ऐसे होने चाहिए जो परीक्षणीय विषय के उद्देश्यों के आधार बने हों। संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों पर तृतीय अध्याय में विस्तार से विचार किया गया है, किंतु परीक्षणों की रचना केवल संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर ही ना होकर छात्रों के व्यवहारों में अभीष्ट परिवर्तन के अनुसार होगी। छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाने के लिए हमें अपने अध्यापन की स्पष्ट रूपरेखा तैयार करनी होगी और अध्याप्य बिंदु निश्चित करने होंगे। इन अध्याप्य बिंदुओं के आधार पर ही शिक्षकों एवं छात्राओं और छात्रों की शैक्षणिक क्रियाएं निश्चित होंगी और उन क्रियाओं का मूल्यांकन होगा। नवीन दृष्टिकोण के अनुसार संस्कृत का पाठ्यक्रम, संस्कृत शिक्षण विधियां एवं मूल्यांकन एक इकाई के रूप में देखे जाने चाहिए। इस दृष्टि से संस्कृत शिक्षण के तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं। प्रथम पाठ्यक्रम, द्वितीय शिक्षण विधि और तृतीय मूल्यांकन। मूल्यांकन की इस प्रक्रिया में निम्नलिखित त्रिभुज द्वारा चित्रित किया जा सकता है। शीर्ष पर पाठ्यक्रम, द्वितीय रेखा पर शिक्षण विधि, तृतीय रेखा पर मूल्यांकन। ये तीनों एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। हमारी आजकल की शिक्षा और शिक्षण विधि परीक्षा केंद्रित हो गई है। छात्रों के लिए शिक्षा का उद्देश्य परीक्षा पास करना मात्र रह गया है। अतः यदि हम परीक्षा पद्धति को सुधार दें तो शिक्षण स्तर अपने आप ही सुधर जाएगा। मूल्यांकन में संस्कृत शिक्षण के निम्नलिखित लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रथम, पाठ से संबंधित तथ्यों, नियमों, सूत्रों, प्रत्ययों, संकेतों, प्रक्रियाओं इत्यादि की जानकारी। द्वितीय, पाठों से संबंधित जानकारी की समझ अर्थात छात्र द्वारा उनका अर्थ ग्रहण, उन पर उसकी अधिकार प्राप्ति, उनके मूल का ज्ञान, उनमें पारस्परिक समताएं और समानताएं एवं अंतर, उनके विश्लेषण एवं संश्लेषण की क्षमता, उनमें से वांछित का चुनाव कर सकना, त्रुटियों न्यूनताओं को समझ सकना इत्यादि। तृतीय, विषय ज्ञान को नवीन तथा भिन्न परिस्थितियों में प्रयोग कर सकना। चतुर्थ, भाषा के संबंधित विभिन्न कौशलों यथा बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना और आदि का कौशल का अर्जन। पंचम, संस्कृत द्वारा वांछित अभिवृत्तियों का निर्माण। षष्ठ, संस्कृत से संबंधित विभिन्न रुचियों का विकास। सप्तम, रसानुभूति। हमारी आजकल की लिखित परीक्षाओं का क्षेत्र सीमित है। आजकल के प्रश्न पत्र उपर्युक्त लक्ष्यों में से अधिकतर केवल प्रथम लक्ष्य अर्थात पाठ से संबंधित जानकारी मात्र की ही जांच करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य जांच से अछूते रह जाते हैं। नवीन मूल्यांकन प्रणाली में इस प्रकार के प्रश्नों की रचना की जाती है जिनके उत्तर निश्चित हों। इससे विषयनिष्ठता आ जाती है और अंकन निष्पक्ष हो जाता है। इन प्रश्नों के अंकन में परीक्षकों के परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता और परीक्षण वैध एवं विश्वसनीय होता है। नवीन मूल्यांकन प्रणाली को संस्कृत परीक्षाओं में भी प्रयुक्त करना चाहिए। इसके लिए प्रश्नों की रचना बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्नों की रचना पर ही नवीन परीक्षा प्रणाली की सफलता निर्भर रहती है। नवीन परीक्षा प्रणाली में प्रश्नों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन प्रश्नों में मुख्य रूप से 5 प्रकार के प्रश्न होते हैं। प्रथम, बहुविकल्पीय पद। द्वितीय, रिक्त स्थान पूर्ति पद। तृतीय, सत्यासत्य निर्देश पद। चतुर्थ, समानता निर्देश पद। पंचम, प्रत्यावहन पद। संस्कृत भाषा की परीक्षा लेने में इनका प्रयोग किया जा सकता है। नीचे नवीन मूल्यांकन प्रणाली के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। उद्देश्य, बालकों को संस्कृत भाषा के कुछ शब्दों पर अधिकार प्राप्त करने की योग्यता प्रदान करना। मान लीजिए वे शब्द हैं इंदह, सुधांशुह, कमलम, नीलकंठ, द्विज, हरिय, विबुध, प्रकाश, पंडित। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में प्रायः प्रश्न होता है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताओ तथा उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग करो। इंद्रह, कमलम, सुधांशुह, नीलकंठ, द्विज, हरिय, विबुध, प्रकाश, पंडित। नवीन मूल्यांकन प्रणाली के अनुसार उपर्युक्त उद्देश्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न किए जा सकते हैं। प्रथम, नीचे 3 खाने बने हैं। पहले खाने में कुछ शब्द लिखे हुए हैं और शेष 2 खाने रिक्त हैं। आगे अनेक शब्द दिए हुए हैं जो प्रथम खाने में से लिखे हुए शब्दों के पर्यायवाची हैं। प्रत्येक शब्द के आगे उस शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखो। इंद्रह, सुधांशुह, कमलम, नीलकंठ, द्विज, हरिय, विबुध, प्रकाश, पंडित। पर्यायवाची शब्द विदुह, विद्वान, विप्र, अजर, मधवा, आलोक, पंकज, सिंह, पिनाकी, पुरंदर, ब्राह्मण, अमर, सचिपति, राकेश, प्रतिभावान, इंदीवरम, केसरी, चंद्रशेखर, प्रभाकर। द्वितीय, नीचे 3 खाने बने हैं। पहले खाने में जो शब्द हैं उनके विलोम शब्द अव्यवस्थित रूप से दूसरे खाने में दिए गए हैं। प्रत्येक शब्द के विलोम शब्द को उसी के सामने तीसरे खाने में लिखो। क, पंडिता, ख, जरा, क, प्रकाश, ख, असुरा, क, अजरा, ख, मूर्ख, क, विबुध, ख, तमसम। तृतीय, नीचे 3 खाने बने हैं। पहले खाने में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, सबसे आगे अन्य शब्द दिए हुए हैं। प्रथम खाने में लिखे हुए शब्दों के दो अर्थ हैं जिनके प्रतीक स्वरूप सबसे नीचे शब्द हैं। प्रत्येक शब्द के सामने दो शब्द लिखो जो प्रथम खाने के शब्द के अर्थ के रूप में हो। लिखने के लिए दो खाने खाली हैं। क नीलकंठः, द्विजः हरियः, दंतः मयूरः, सिंहः विष्णुवः, पक्षी विशेषः विप्रः शिवः। चतुर्थ, नीचे लिखे कोष्ठक में दिए हुए शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सूर्योदय काले सर्वत्रैव रिक्त स्थान भवति, पंडितः संध्या वंदन रिक्त स्थान गायन्ति, रिक्त स्थान हसति, रिक्त स्थान दिनं शोभायनां वर्तते। एतादृशं कुर्वन्ति प्रकाशः कमलं गायकः इन्द्रस्य सुधांशुः। पंचम, निम्नलिखित में सत्यासत्य निर्देश करो। प्रथम, कमलम तृतीय का एक वचन का रूप है। द्वितीय, हरियः शब्द पुल्लिंग है। तृतीय, द्विज पक्षी को भी कहते हैं। चतुर्थ, सुधांशुः का षष्ठी का एक वचन में सुधांशस्य रूप होगा। पंचम, इंद्र का रूप राम शब्द की भांति चलेगा। षष्ठ, नीलकंठ केवल शंकर जी को कहते हैं। षष्ठ, नीचे अपूर्ण कथनों को पूरा करने के कई विकल्प हैं। जो सर्वाधिक उचित विकल्प हो उसके आगे सही का चिन्ह बना दो। क, भगवान शंकर को नीलकंठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रथम, वे बड़े दयालु हैं। द्वितीय, उन्होंने भस्मासुर को मारा था। तृतीय, विस्पान के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया। चतुर्थ, वे नीलकंठ पक्षी के समान हैं। ख, ब्राह्मण को द्विज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह यज्ञ करता है और कराता है। द्वितीय, वह अध्ययन करता और कराता है। तृतीय, वह दान लेता है। चतुर्थ, उपनयन संस्कार द्वारा उसका दोबारा जन्म होता है। पंचम, उसका समाज में आदर होता है। सप्तम, का के नीचे लिखे हुए शब्दों को ख के नीचे लिखे हुए शब्दों में से संयुक्त करने पर वाक्य पूर्ण हो जाता है। वाक्यों को पूर्ण करके लिखो। क, दिवसे द्विजः। द्वितीय, अंधकारे सुधांशुः। तृतीय, किं त्वं कमलम्। चतुर्थ, पंडितः अद्यः। पंचम, सः नीलकंठं दृष्ट्वा। छ, अस्मिन् नगरे बहवः। ख स्तंभ, प्रथम, पुस्तकं पठित्। द्वितीय, पश्यसि। तृतीय, संध्यां कुर्वन्ति। चतुर्थ, प्रकाशा भवति। पंचम, विबुधः सन्ति। षष्ठ, सहर्षम अवलोकयत। अष्टम, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं और उनके बाद कुछ वाक्य लिखे हैं जो प्रत्येक की विशेषता बताते हैं। प्रत्येक वाक्य के अंत में कोष्ठक में उस शब्द को लिख दिया जाता है जिसकी वह वाक्य विशेषता बताता है। कमलम देवता आत्मा, कलत्र मित्र इंद्र। प्रथम, संस्कृत में पुल्लिंग किंतु हिंदी में स्त्रीलिंग है। द्वितीय, संस्कृत में स्त्रीलिंग किंतु हिंदी में पुल्लिंग है। तृतीय, यह शब्द नपुंसक लिंग है किंतु इसी अर्थ के संस्कृत में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द भी हैं। चतुर्थ, यह शब्द जब दूसरे लिंग में प्रयुक्त होता है तो अर्थ परिवर्तित हो जाता है। पंचम, संस्कृत में यह नपुंसक लिंग है किंतु हिंदी में पुल्लिंग है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि नए वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का उपयोग हम संस्कृत की परीक्षा में भी कर सकते हैं। इन नए परीक्षणों से यह लाभ होता है कि अंकन सरल हो जाता है और अंकन निष्पक्ष होने में साथ साथ समय भी कम लगता है। प्रश्न और उसके उत्तर निश्चित होते हैं, अतः भ्रम की गुंजाइश नहीं रहती। ये परीक्षण वैध एवं विश्वसनीय भी होते हैं क्योंकि इनके उत्तरों में भिन्नता नहीं होती। इनसे यह विदित हो जाता है कि छात्र ने अर्जित ज्ञान को व्यवहार में उतारने की कला सीखी है या नहीं। किंतु नवीन परीक्षणों में प्रश्नपत्र अनावश्यक रूप से लंबा हो जाता है और प्रश्नपत्रों का निर्माण बड़ी सावधानी से करना पड़ता है। कभी कभी बालक अनुमान से भी उत्तर लिख देते हैं। संस्कृत भाषा की उचित परीक्षा। भाषा के चार मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए संस्कृत भाषा की विशेषताओं की रक्षा करते हुए मूल्यांकन की कोई विधि अपनानी चाहिए। संस्कृत भाषा में उच्चारण एवं पठन का विशेष महत्व है, अतः संस्कृत भाषा की परीक्षा सामान्यतः दो रूपों में होनी चाहिए। प्रथम मौखिक परीक्षा, द्वितीय लिखित परीक्षा। मौखिक परीक्षा का वर्तमान परीक्षा प्रणाली में कोई स्थान नहीं है। नवीन मूल्यांकन प्रविधियों में भी भाषा के इस पक्ष की उपेक्षा की गई है, किंतु यह उपेक्षा वांछनीय नहीं है। मौखिक परीक्षा द्वारा ही उच्चारण शुद्धता, मौखिक आत्म प्रकाशन की क्षमता तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझने की योग्यता की जांच हो सकती है। मौखिक परीक्षा का हम निम्नलिखित रीति से प्रबंध कर सकते हैं। प्रथम, छात्रों को संस्कृत गद्यांश या उन्हीं के स्तर का कोई श्लोक पढ़ाकर सुनाने और उनसे उसका भाव लिखने के लिए कहना। द्वितीय, किसी गद्यांश या श्लोक को छात्रों द्वारा पढ़वाकर उच्चारण की जांच करना। तृतीय, अध्यापक संस्कृत में किसी विषय पर बोले और छात्रों से उसका सारांश लिखने को कहे। चतुर्थ, श्रुत लेख। पंचम, मौखिक रूप से कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए छात्रों के समक्ष प्रश्न प्रस्तुत करना। षष्ठ, पाठ्यपुस्तक में पढ़े हुए किसी गद्य खंड या श्लोक के सारांश को मातृभाषा या संस्कृत में कहलाना। सप्तम, किसी विषय पर छात्रों से संक्षिप्त भाषण देने को कहना। अष्टम, परीक्षा में केवल पाठ्य सामग्री के हिंदी अनुवाद पर ही बल ना दिया जाए, बल्कि प्रश्नोत्तर वाक्य, रिक्त स्थान की पूर्ति, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग, अशुद्ध, शुद्ध आदि पर प्रश्न होने चाहिए। नवम, पाठ्य वस्तु पर ऐसे प्रश्न हो जिनसे बच्चों को पूर्ण पुस्तक पढ़ने की आकांक्षा हो और पुस्तक की अनेक बातों को स्मरण रखने की प्रेरणा मिले। दसम, व्याकरण की परीक्षा में शब्द और धातु रूप ही न पूछे जाएं, बल्कि प्रयोग तथा उनकी विभक्ति आदि का ज्ञान पूछा जाए। एकादश, कंठस्थ श्लोकों पर भी प्रश्न आधारित हों। जहाँ तक लिखित परीक्षा का प्रश्न है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में इसी का सर्वाधिक प्रचलन है। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का प्रयोग किया जाना चाहिए, किंतु निबंधात्मक परीक्षाओं का अपना पृथक महत्व है। शैली एवं पठन गठन की परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा नहीं हो पाती। इनकी जांच करने के लिए तो निबंधात्मक परीक्षाओं का ही आश्रय लेना पड़ेगा। लिखित परीक्षा के रूप में निबंधात्मक परीक्षाओं एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का समन्वित रूप ही श्रेष्ठ है।